तो बच्चों, आपने पिछले एपिसोड में सुना कि किस तरह से ये दोनों बच्चे अपनी शरारत करते हुए कुएं के पास पहुंच गए। छोटू और मिंटू दोनों ही कुएं में सांप की पुचकार सुनने के लिए ललायित थे। मन विचल रहा था, बार बार मन चाह रहा था कि किसी तरह से सांप की एक बार तो फुसकार सुन ली जाए। दोनों बच्चे छोटे नासमझ और चंचल थे। दोनों ने जैसे ही ढेला उठाकर फेंका कुएं में से, इससे पहले कि फुसकार की आवाज आती, दोनों ने कुएं में झांका। मिंटू ने अपनी टोपी के अंदर अपनी चिट्ठियां रखी हुई थी जो बड़े भाई साहब ने दी थी, याद है? बड़े भाई साहब ने उन्हें 3 चिट्ठियां दी थी जिसे मिंटू ने अपनी टोपी में संभाल कर रख लिया था। लेकिन सांप की फुसकार सुनने के लिए जैसे ही उसने कुएं में झांका, ये क्या, चिट्ठियां घूम घूम के जैसे कटी हुई पतंग लहराती हुई नीचे की तरफ चली जाती है, इसी तरह से ये तीनों चिट्ठियां भी लहराती हुई धीरे धीरे करके कुएं में जाने लगी। और जैसे जैसे वो चिट्ठियां कुएं में लहराती हुई जा रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे लहराते हुए मिंटू के शरीर में से उसके प्राण भी धीरे धीरे निकल रहे हैं। हालात ऐसे हो गए थे कि ना रोते बनता था ना हंसते। छोटा भाई भी तो साथ में है ना, रोएगा कैसे? बड़े भाई की जिम्मेदारी भी निभानी है। आंखों में आंसू तो भरे पर गिरे नहीं। बहुत कोशिश की। जिस तरह से एक पतीले में दूध का उफान आता है और उसके ऊपर एक ढकना रख दिया जाए कि पानी बाहर नहीं गिरेगा, दूध बाहर नहीं गिरेगा, लेकिन फिर भी वो गिर जाता है, इसी तरह से मिंटू की आंखों में भी पानी भर गया था। आंखों की पलकों को उसने ज़बरदस्ती करके बंद करना ही था कि धीरे धीरे कपोलों के ऊपर आंसू घुलक गए। शरीर कांपने लगा, पसीने से तरबतर हो गया था। ऐसे लगा नीचे जमीन नहीं, ऊपर आसमान नहीं। काश इस समय माँ होती, उसका आंचल मिल जाता, छुप जाते हम दोनों उसकी बाहों में, एक ताकत सी मिल जाती। पर क्या करें, आज ना तो माँ है ना उसका आंचल है, है तो केवल एक डर, एक भय और साथ में एक छोटा भाई जो बेचारा चिट्ठियों के गिरने से ही डरा और सहमा हुआ था। जैसे ही उसने मिंटू की आंखों से गिरते हुए आंसू को देखा, वैसे ही उसने दहाड़े मारकर रोना शुरू कर दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था, क्या करूं क्या करूं, भैया क्या हुआ, अब मार पड़ेगी, अब हम दोनों पिटेंगे, भैया ये क्या हुआ, अरे कुछ नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो उपाय निकालते हैं। बड़ा भाई डरा हुआ है, लेकिन अपने डर को किसी तरह से काबू में करते हुए, छुपाते हुए मिंटू को हौसला देने की कोशिश कर रहा है। कोशिश जारी है लगातार, किसी तरह तो संभल ही जाएंगे। थोड़ी देर सोचने के बाद मन ने विचार किया कि घर चले जाते हैं और भाई साहब को बता देते हैं कि हम कुएं में झांक रहे थे, सांप को देखना चाहते थे, चिट्ठियां उसमें गिर गईं। पर ऐसा बोलने का मतलब था पिटाई, पिटना तो चाहते नहीं थे, इसलिए सोचा कि झूठ बोल देते हैं। लेकिन बच्चे छोटे थे, नासमझ थे, भोले थे, सादगी थी, झूठ बोलना नहीं आता था, इसलिए झूठ कैसे बोलते। सोचा कि माँ को जाके बता देंगे तो माँ आंचल में छुपा लेगी, लेकिन माँ तक पहुँचेंगे कैसे, सबसे पहले तो बड़े भाई का सामना करना पड़ेगा। इसलिए दोनों ने अपनी नासमझी में ही एक विचार किया कि क्यों ना कुएं में उतरा जाए। बड़े भाई ने छोटे भाई को कहा कि ऐसा करते हैं, हम दोनों अपनी धोतियां उतार लेते हैं, इन धोतियों को कस के बांधेंगे, एक रस्सी जैसी बन जाएगी, उसके बाद मेरे पास एक बबूल का डंडा तो है ही, मैं कुएं में बीचों बीच उतरूंगा। बबूल के डंडे के सहारे, बबूल का डंडा मतलब एक कांटेदार डंडा होता है। बबूल एक फल है जो वृक्ष के ऊपर लगता है, उसी वृक्ष की डंडी इन्होंने ली हुई है और उस डंडी के ऊपर कांटे होते हैं। तो इन्होंने सोचा था कि उस डंडी से मैं नीचे बीच में लटकूंगा और उस डंडी से अपनी चिट्ठियां उठा लूंगा। सोचना बहुत आसान होता है, हम किसी भी चीज़ को बड़ी आसानी से सोच लेते हैं, उपाय कर लेते हैं, लेकिन हमारा सोचना, उपाय करना, कर्म करना एक अलग बात है, लेकिन उसका फल देना या ना देना एक तीसरी ताकत पर निर्भर करता है। अर्थात हम सोचते कुछ और हैं, लेकिन ईश्वर ने भी तो हमारे लिए कुछ सोच रखा है। यहाँ भी इन दोनों बच्चों ने आपस में सलाह मशवरा किया और यही सोचा कि हम दोनों नंगे हो जाते हैं। दोनों ने जो निक्कर की जगह धोतियाँ बांधी थी, दो धोती तो वो मिल गई इनको, इन्होंने वो धोतियाँ खोल ली। दो धोती अपने कानों पर बांधी हुई थी ताकि ठंड ना लगे, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि सर्दी बहुत थी, चिल्ला जाड़ा पड़ रहा था, चुभने वाली सर्दी थी। कान के ऊपर जो बंधी हुई धोतियाँ थी वो भी खोल दी गई, तो इनके पास कुल मिलाकर कितनी, चार धोती हो गई। और एक धोती और भी थी जिसमें माँ ने इनको चने बांध कर दिए थे, वो भी खोल ली गई, तो कुल मिलाकर पांच धोतियाँ अब इनके पास हो गई हैं। पांचों धोतियों को एक के साथ एक जोड़कर बांध लिया है। बांधने के बाद बड़े भाई ने सोचा कि मैं इसके कुएं के अंदर इस रस्सी के सहारे जाऊंगा और बबूल के डंडे से चिट्ठियां उठा लूंगा। अब समस्या थी कि इसको बाहर से बांधा कैसे जाए, तो ये जिम्मेदारी छोटे भाई को दे दी गई और उसे समझा दिया गया, अच्छी तरह से हिदायत दे दी गई कि छोटो, इसको अच्छे से पकड़ के रखना, क्योंकि तुम्हारी थोड़ी सी लापरवाही कुएं में मेरी जान ले सकती है। नहीं भैया, नहीं, ऐसा नहीं होगा, हम दोनों साथ जाएंगे, साथ रहेंगे। भैया मैं करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा, आप चिंता ना करो। छोटे भाई ने, बड़े भाई ने बाहर से रस्सी को अच्छी तरह से बांध दिया और उसका एक सिरा छोटे भाई को पकड़ा दिया। कहते हैं ना, जब मुसीबत आती है उस समय छोटा या बड़ा कुछ नहीं होता। छोटा चाहे कितना भी छोटा था, लेकिन बड़े भाई की जिंदगी से प्यार था, बड़े भाई से प्यार था और शायद उसकी ज़िंदगी ही था, तो कैसे खोने देता उसे। इसलिए ये ताकत खुद ब खुद उसके अंदर आ गई थी और उसने रस्सी के छोर को अच्छी तरह से पकड़ा हुआ था, जिसे बड़े भाई ने अपनी समझदारी के साथ साथ मुंडेर के साथ भी बांध दिया था। बड़ा भाई धीरे धीरे करके रस्सी के सहारे नीचे उतरा। कुआं तो कच्चा था ही, जैसे ही वो नीचे उतरने की कोशिश करता, अपने पैरों से एक समकोण बनाता हुआ नीचे की तरफ जा रहा था। समकोण यानी 90 डिग्री का एंगल। समकोण बनाते हुए नीचे की तरफ जा रहा था, पर क्योंकि कुआं कच्चा था, उसकी दीवारों से मिट्टी झड़ जाती थी और झड़कर जैसे ही सांप के ऊपर गिरती थी, सांप फुफकारता था। जिस फुफकार को सुनने के लिए ये लोग उसमें ढेला फेंकते थे और मजा करते थे, आज वही फुफकार डरावनी लग रही थी। मिंटू जैसे तैसे करके धीरे 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 उतरने की कोशिश कर रहा था, डंडा हाथ में लिया हुआ है। उसने सोचा था कि मैं नीचे उतरूंगा, डंडे के सहारे चिट्ठियां उठा लूंगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि हम सोचते कुछ और हैं, उपाय कुछ और करते हैं, लेकिन उसका परिणाम कुछ और ही निकलता है। यहाँ पर भी ये बच्चा जो मिंटू है नीचे उतरा, लेकिन जैसे ही नीचे उतरता एक ढेला गिर जाता और सांप के आसन बदल जाते। आसन मतलब सिचुएशंस, आसन बदल जाते, और आसन बदलते ही बड़ा भाई पसीने से तरबतर हो जाता। थोड़ा और नीचे गया, हाँफते हुए धीरे धीरे करके कोशिश करके नीचे तक पहुंचा, और जैसे ही नीचे पहुंचा, बड़े भाई को लग रहा था कि मैं ताकतवर हूं, लेकिन सांप अपनी ताकत का परिचय उसे बार बार दे रहा था। जैसे ही बड़ा भाई थोड़ी नीचे की तरफ उतरा और उसने देखा कि किस तरह से सांप अपने आसन बनाए हुए बैठा है। कुंडली मारी हुई थी, लेकिन ये क्या? अचानक सांप उछला और उछलकर डंडे के ऊपर उसने अपना थूक डाल दिया और मिंटू को दिखा दिया कि तू क्या ताकतवर है, तुझसे ज़्यादा ताकतवर तो मैं हूँ। मिंटू घबरा गया क्योंकि ठंडा ठंडा सांप का पीछे का जो हिस्सा था उसके ऊपर लगा और साथ में थूक का कुछ हिस्सा भी उसके डंडे को छू गया था। सांप ने अपनी ताकत का परिचय उसे दे दिया था। मिंटू भयभीत हो गया, बहुत डर गया था, समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह से इन चिट्ठियों को प्राप्त करे, पर उसने हार नहीं मानी। वो धीरे धीरे करके अपनी कोशिश में लगा रहा और चिट्ठियों को धीरे धीरे करके उसने अपनी उठा लिया। अपनी चिट्ठियां उठाते ही ऊपर की तरफ आने की कोशिश करने लगा, लेकिन डंडा गिर गया। डंडे के गिरते ही जोर से आवाज आई बड़े भाई की, और जैसे ही बड़ा भाई चीखा आ, तो छोटा भाई रोने लगा। छोटे भाई ने रोना शुरू कर दिया। उसे लगा कि बड़ा भाई मर गया है, सांप ने उसे डस लिया है और अब मैं घर जाकर अकेले पिटूंगा। यही सोचकर बेचारा रो रहा था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। रस्सी का छोर छोड़ा नहीं, पकड़े रखा उतनी ही ताकत के साथ जितना पहले पकड़ा हुआ था। अपनी कोशिश में लगा रहा। धीरे धीरे करके बड़ा भाई ऊपर की तरफ आने लगा। मिंटू कोशिश कर रहा था आने की, लेकिन जब नीचे की तरफ जा रहा था, चिट्ठियां उठानी थी, तो उसे ऊंचाई का पता ही नहीं चल रहा था कि कितनी गहराई में उतर रहा है, कितनी ऊंचाई से कितनी नीचे आ गया है। पर अब क्योंकि चिट्ठियां अपने हाथ में आ गई थी, काम हो गया था, तो अब थकान महसूस होने लगी थी। जैसे ही वो अब ऊपर चढ़ने लगा धीरे धीरे करके, तो उसे समझ में आया कि वो 36 फीट नीचे आ गया है। 36 फीट, समझते हो, 36 फीट। अब थकान महसूस हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे करके ऊपर तो आना ही था। लेकिन एक चीज अच्छी हुई, जब मिंटू नीचे उतर रहा था तो दीवार कच्ची थी और उनके सहारे उतरने का तरीका उसे समझ नहीं आ रहा था, पर सांप ने उसे समकोण बनाने का तरीका सिखा दिया था। समकोण बनाने के तरीके को सीखते हुए ही धीरे धीरे करके जैसे वो नीचे उतरा था, उसी तरह कोशिश करके वो ऊपर की तरफ आने लगा। सांस फूल गई थी, हाँफ रहा था, पर कोशिश नहीं छोड़ी थी। ऊपर की तरफ आता गया और कुएं से बाहर निकल आया। लेकिन ये क्या, कुएं से बाहर निकलते हुए उसे गांव के एक लड़के ने देख लिया। दोनों भाई झपट पड़े उसके ऊपर। क्या तुमने मुझे कुएं से निकलते हुए देखा है? खबरदार, जो गांव में जाकर तुमने ये बात किसी को बताई तो ये चने लो और मौज करो। अगर गांव में किसी को जाकर ये बात बताई तो फिर देखना तुम्हारा क्या हाल होगा। इतना कहकर दोनों भाई चिट्ठियां लेकर चले गए। आज मिंटू 10वीं कक्षा पास कर चुका है। 10वीं कक्षा पास करने के बाद भी मन से ये घटना गई नहीं, ये याद हूबहू शब्दशः उसे याद है। आज माँ के आंचल में लेटा हुआ है, माँ सिर पर हाथ फेर रही है, सुकून सा मिल रहा है। आज मन किया तो माँ को ये पूरी घटना सुनाई। माँ की सांसों से समझ में आ रहा था कि माँ कितनी घबराई हुई है। हमने जान का जोखिम जो उठाया था, काश उस दिन भी इसी तरह से माँ का आंचल मिल जाता, माँ अपनी गोद में अपने डैनों में हमें छुपा लेती तो शायद हम ये जोखिम नहीं उठाते। तो बच्चों, ये जो बच्चों की मासूमियत है, इस मासूमियत के चलते ही हम बच्चे कहलाते हैं। और मुझे लगता है कि हमें इस पाठ से ये शिक्षा लेनी चाहिए कि जोखिम भरे काम नहीं करें। ठीक है, गलती हो जाती है, शरारत करते हैं, लेकिन माफ़ी भी तो मांग सकते हैं। घर आके अपनी बात बताई भी जा सकती है। हर समस्या का एक समाधान होता है, लेकिन यदि आप समस्या के समाधान इन बच्चों की तरह, मिंटू और छोटू की तरह यदि खुद ही कर लोगे, ऐसे में अगर जान का जोखिम चला जाएगा तो सोचो उन बच्चों के साथ उन माँ बाप का क्या होगा जिन्होंने उन्हें इतने प्यार से पाला पोसा है, जो इतनी इच्छाओं के साथ, इतनी मन्नतों के साथ इस दुनिया में उनको लेकर आए हैं। तो बच्चों, मेरी आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है, सिर्फ एक ही विनती है कि शरारत करो, चंचल रहो, पर इस तरह के जोखिम ना उठाओ। धन्यवाद।